श्री श्री राधा कृष्ण गोविंदा शंकर राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
साधु साधु सुराह। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान को अनन्य भाव से हमेशा चिंतन करने से क्या होता है। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उनका योगक्षेम को देखता हूँ। इसका अर्थ है प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं, अंदरूनी अर्थ बता रहा है कि भगवान से जुड़ जाते हैं इसको योग कहते हैं, या उनको सानिध्य को प्राप्त कर देते हैं। और कभी भी इस संसार में फिर से पुनः वो जन्म नहीं लेते। तो संसार चक्र से भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 23। इत्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते देवि मामेव कौन्तेया यजन्त्या विभूलकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरे ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा देवी देवताओं का पूजा। प्रभुपाद जी वो श्लोक उल्लेख करते हैं ना, तरोर्यता मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंदभुजोपशाखः प्राणोपहारस्य यतेन्द्रियाणां सर्वाहारं तथैव सर्वाहारं अच्युते च। कि जब हम लोग पानी मूल को जड़ को दे देते हैं तो फूल पत्ते वृक्ष सबको पानी पहुंच जाता है। और जब हम अन्न को पेट को दे देते हैं तो सबको शक्ति प्रदान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हमें अलग से देवी देवताओं का पूजा करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे देवी देवताओं का पूजा को करने से भगवान का ही पूजा होता है, लेकिन वो अविधि पूर्वक हो। वो ऐसा है कि आप अलग से पत्तों को, जड़ को पानी देने की बजाय पत्ते फूलों को पानी दे रहे हैं। तो वही श्लोक प्रॉपर यहाँ पर तो दूसरी तरीके से उसको वर्णन कर रहा था। पर और प्रॉपर कहते हैं कि देवी देवताओं का पूजा करना क्या है, जो सहायक होते हैं बड़े व्यक्ति का, उनको क्या बोलना, ब्राइब, रिश्वत, क्या बोलते, घुस देना, घुस देने के समान है। हम उस दिन चर्चा भी करते हैं ना, प्रभुपाद जी को भी पूछा गया था, क्या आप इनको मिले हैं ऐसे? मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, उसके असिस्टेंट को क्यों, उसके पास क्यों जाऊँ ऐसे? तो जरूरत नहीं है। और ऐसे करना क्या है, घुस देना क्या है, ये प्रभुपाद बोलते हैं ये नियम के विरुद्ध है ऐसे, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हरे को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है, इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। तो कभी कभी लोग ऐसा भी सोचते हैं, अभी हम लोग अपना जो भी देवता जिनको हम पूजा कर रहे हैं, या कोई लोगों का कुल देवता भी होते हैं यहाँ पर, होते हैं क्या नॉर्थ इंडिया में, होते हैं कि साउथ इंडिया में होते हैं, तो वो लोग ऐसे सोचते हैं हम इनको पूजा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे ऐसे कहते हैं। लेकिन वो गुस्सा नहीं होंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो सब लोग भी भगवान के सेवक ही है। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं अविधि पूर्वक। हालांकि वो भगवान को ही अंत में ये सभी देवी देवता क्या है, जैसे वो उदाहरण लेंगे, भगवान के वो विराट रूप के ही अंग हैं, उनके शरीर के अंग हैं अलग अलग देवी देवताएं, इसलिए उनको पहुंच जाता है। तो लेकिन ये अविधि पूर्वक है। सो भगवान कृष्ण को देवी देवताओं के द्वारा पूजा करना, उपासना करना क्या है, वो अविधि पूर्वकम है। और भगवान कृष्ण को शुद्ध भक्तों के द्वारा पूजा करना क्या है, वो विधि पूर्वक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों के द्वारा, परंपरा के द्वारा हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए अक्षय विग्रह का जब हम लोग पूजा करते हैं तो पहले सभी परंपरा आचार्यों को दिखाया जाता है, जो भी हम लोग अर्पण करते हैं तो उनके द्वारा हम लोग जाते हैं। तो ये विधि पूर्वकम है। और देवी देवताओं के द्वारा जाना क्या है, वो अविधि पूर्वक। तो देवी देवताएं शुद्ध भक्त नहीं होते, और वो अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। ऊंचे लोगों में सभी लोग भक्त हैं, लेकिन वो अलग अलग आसक्ति रहता है उनको, देवी देवताओं को भौतिक भोग करने का आसक्ति रहता है, इसलिए वो लोग क्या है, कर्म मिश्र भक्त है। सप्त ऋषियों को अनासक्ति से आसक्त रहता है। और जनलोक तपोलोक में तपस्या से आसक्त रहते हैं, जनलोक में क्या है, ज्ञान से आसक्त रहते हैं। ऐसे ये सब लोग क्या है, मिश्र भक्त है। नीचे लोगों में सब भक्त है, नीचे लोगों में सभी असुर है। तो हमारे ऐसे कोई आसक्ति रहता है तो ऐसे अलग अलग स्थान पर जाते हैं, हमारा गति ऐसे होता है। भक्ति करते करते हमें ऐसे कोई आसक्ति होता है तो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति, उसको उत्तम भक्ति आश्रम भक्ति है। तो श्लोक क्रमांक 24, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनास्तश्यवन्ति ते, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, तीसरे अध्याय में हम लोग यज्ञ के बारे में चर्चा किए थे। तो यज्ञ क्या है, कैसे ये प्रारंभ हुआ, कौन इसको दिए, कहाँ पर ये सब बताया गया है, ये सब चीज हम लोगों ने तीसरे अध्याय में चर्चा किया। और वहाँ पर भगवान बोलते हैं यज्ञातात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तो हमें यज्ञ को भगवान के प्रसन्नता के लिए या कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तो वो यज्ञ बन जाता है। और वास्तव में भगवान कौन है, वो यज्ञपति है, यज्ञ के स्वामी है। श्रियापतिर यज्ञपति प्रजापतिर दियांपतिर लोकपतिर धरापति प्रतिर्गतिश्चांद प्रवर्षणि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति, वो सबके पति है। श्रियापति सभी ऐश्वर्य या सुंदरताओं का वो पति है। यज्ञपति यज्ञों के पति है। प्रजा उनके पति है। सभी हमारे बुद्धि का पति है। और लोकपति लोकमहेश्वरम, ये पृथ्वी के भी पति है, धरापति। तो पतिर गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम, अंधक वृष्णि ऐसे सात्वता जो वंश है उनके गति भी है और पति भी स्वामी भी है। प्रसीदताम में भगवान सताम पति, मैं ऐसे भगवान को शरण में जाता हूँ जो सभी सताम मतलब सात्वत भक्तों का स्वामी है। तो भगवान कृष्ण ही यज्ञों के पति है। और यज्ञ कैसे होते हैं, अन्ना भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञान भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र। यज्ञ उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, यज्ञ का अर्थ मतलब क्या, सिर्फ अग्नि में घी नहीं ना डालना है, जो नियत कर्म पालन करना उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म नियत कर्म को पालन करने से आता है। तो यहाँ पर जब भगवान बोलते अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, तो नियत कर्मों से जो फल मिलता है उसका मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ और मैं ही उसका स्वामी हूँ। या दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म का वो केंद्र भगवान कृष्ण है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि क्या है, जो परिपूर्ण समाज है, मानव समाज या मानव समाज का परिपूर्ण अवस्था है या व्यवस्था है वो वर्णाश्रम धर्म, उससे क्या करना है, भगवान विष्णु को ही संतुष्ट करना है। सो वर्णाश्रम अत कुंभेर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभावश सनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। तो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषियों को बोल रहे थे, द्विज श्रेष्ठ, द्विजों में श्रेष्ठ ये ब्राह्मण, तो वर्णाश्रम विभाग से ये वर्णाश्रम विभाजन का परिपूर्णता क्या है, संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि को तोषण करना, इसलिए यहाँ पर भोक्ता आचा पौरे वो भोक्ता हो। तो उसके बाद में ये बोलते हैं कि जो ये नहीं जानते हैं, न तो माम अभिजानाति तत्वेना तश्चवंतिते, जो ये नहीं जानते हैं क्या हो जाता है, उनका खत्म हो जाता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, वो ग्यारहवें स्कंद में हम लोग उन श्लोकों को भी उल्लेख कर रहे थे ना पीछे पहले, तो वहां पर वर्णन आता है कि कैसे ये सब 11.3.1920 याद नहीं है रेफरेंस। तो ये अलग अलग भाग शरीर भगवान के अलग अलग भाग शरीर के भगवान अलग अलग भाग से ये लोग प्रकट हो जाते हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी वगैरह। तो वो लोग भगवान का सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो हालांकि वो बहुत अच्छी तरह से वर्णाश्रम का पालन कर रहे हो, फिर भी उनका पतन हो जाता है, या वो वास्तव में वहां पर तो बताए नरक जाते हैं। कि इसलिए वर्णाश्रम धर्म का केंद्र बिंदु कौन है, भगवान कृष्ण। तो वर्णाश्रम के पतन का बहुत सारे कारण है, उनमें से प्रमुख कारण क्या है, भगवान को छोड़कर अन्य किसी को पूजा करना, देवी देवताओं का पूजा करना जब प्रमुख बन जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता बढ़ जाता है, तो देवी देवताओं का भी उपासना है, वेदों में उपासना कांड है, लेकिन वो क्या है, वो वर्णाश्रम सभ्यता का वो बाहरी भाग है, या वेदों का जो बाहरी भाग है बस। तो जब देवी देवताओं का पूजा प्रमुख हो जाता है तो पतन हो जाता है। वर्णाश्रम के लिए बहुत सारे कारण है पतन के लिए, ब्राह्मणों का पतन हो जाता है, या अन्य देशों से ऐसे लोग आते हैं, जब क्षत्रिय दुर्बल हो जाते हैं, ब्राह्मणों का पतन होने के कारण क्षत्रिय दुर्बल हो जाते हैं, सही योग्य क्षत्रिय नहीं रह जाता, ऐसे म्लेच्छ यवन चोर लुटेर लोग बाहर के देश से आके आक्रमण करते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं क्यों वर्णाश्रम का पतन होता है, लेकिन प्रमुख कारण क्या है, भगवान कृष्ण का जो केंद्र है वर्णाश्रम को वो भूल जाना, इसलिए भगवान कृष्ण केंद्र में होना चाहिए वर्णाश्रम, तो नहीं तो वर्णाश्रम का सृष्टि भी नहीं होगा या उसका पालन भी नहीं होगा और उसको हम लोग बना के नहीं रख पाएंगे, वो उसका पतन हो जाता है। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं वर्णाश्रम को धर्म को स्थापन करने के, लेकिन केंद्र क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण होना चाहिए, उनका भक्ति होना चाहिए। तो ये न तो माम अभिजानाति तत्वेना चलन्ति ते, ऐसे बोल ओके। सो श्लोक क्रमांक 25, यान्ति देवाव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च मध्याजिनो भीमान्। हे देवताओं को की जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। सो यान्ति देवव्रता देवान्, पिछले अध्याय में भी वो श्लोक आया था ना, सातवें अध्याय में वो हम लोग देख रहे थे, वहां पर भी देवी देवताओं के पूजा के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। सो अंतवंता फलम तेषां अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत् अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। सो ये देवी देवताओं के उपासक अल्पमेधस है, क्योंकि हम बुद्धिमान वाले हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे चीज को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं का पूजा करते हैं जो वो भी अंत हो जाता है, जिसका अंत हो जाता है, मृत्यु के साथ साथ वो भी खत्म हो जाता है, शाश्वत नहीं है। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो देवताओं का उपासना करते हैं वो देवों के पास जाते हैं और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में वर्णन कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि जो देवी देवताओं का भी पूजा करते हैं वो भी भगवान कृष्ण के पास आते हैं, यथा मत तथा भक्त, ऐसा नहीं है। सो ये यथामत तथापत इसको भी यहाँ पर भगवान खंडन कर रहे हैं। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनो भीमा। सो जो देवताओं को पूजा करते हैं देवों के पास जाते हैं, पितृन यान्ति पितरों को पूजा करते हैं तो पितर लोक में जाते हैं, भूतानी यान्ति भूतेज भूत प्रेतों को पूजा करते हैं तो उनके पास जाते हैं, और यहाँ थी मध्या जिनों की नाम। सो मेरे भक्त क्या है मेरे पास आ जाते हैं ऐसे भक्त। तो ये जो दर्शन यथामत तथापत कहाँ से आ गया उसका भी लंबा इतिहास है इसका। अंत तो गत्वा वहाँ कहाँ जाता है वो शंकराचार्य जी के पास जाता है। सर्वम खलम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म है, वो वास्तविक वेदों का वाक्य है। जैसे आप जानते हैं शंकराचार्य सभी वेदों को वाक्य को लेकर अपना बकवास प्रचार किया हुआ है। तो जब सब कुछ भगवान के समर्पित हो जाता है तब क्या हो जाता है, सर्वकलम इदम ब्रह्म हो जाता है, वो एक अर्थ है। दूसरा है सब कुछ भगवान का ही शक्तियां हैं, जैसे हम लोगों ने देखा अन्य कुछ नहीं है भगवान को छोड़कर, लेकिन फिर भी उन शक्तियों में अंतर है ना, भिन्नता है। वो कैसे कार्य करते हैं, अलग अलग शक्तियां कैसे कार्य करते हैं, उसमें भिन्नता है। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, सब कुछ भगवान है, भगवान या भगवान की शक्ति है, लेकिन उनकी शक्तियाँ अलग अलग तरीके से कार्य करती है। तो इसलिए अंत में सब कुछ एक ही नहीं होता है। सो जब माया शक्ति को भगवान को फिर से उसको जोड़ देते हैं तब वो भी क्या हो जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। लेकिन भगवान को छोड़कर जो कुछ भी हम लोग करते हैं या जो कुछ भी हम लोग अनुभव करते हैं, सो एनी ट्रुथ परस्यूड अपार्ट फ्रॉम कृष्ण इज कॉल्ड एज माया। प्रत्येकम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तम विद्यादात्मनो माया तद विद्यादात्मनो माया यथा भाषम यथा तमः। तो इसलिए माया है वो, क्योंकि भौतिक जगत में सभी जीव अपने आप को भगवान से अलग कर चुके हैं, अपने आप को अलग महसूस करते हैं या अलग से वो भो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए माया है। तो वही माया, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से वो सर्वकलम इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। सो लेकिन हमारे ओर से क्या है वो अलग है, सभी शक्तियां अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। तो वैरायटी, सो वननेस इन दिस इज अचिन यू नो विशिष्टाद्वैत, वननेस इन डाइवर्सिटी, अद्वैत मीन्स वननेस, विशिष्ट मीन्स डाइवर्सिटी। सो वही अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी है। तो इसलिए देवी देवताओं का पूजा भगवान कृष्ण का पूजा नहीं होता, तो वो अलग होता है, आविधि पूर्वक होता है। तो और उसका नतीजा भी, उसका फल भी अलग होता है। तो सब कुछ एक ही नहीं होता है, या यथामत तथापत जो भी आप करो जो भी आप सोचो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं। और प्रभुपाद जी ये श्लोक उसको भी उल्लेख कर रहे थे,
इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों के लिए सुगम यात्रा। आधुनिक जमाने में बहुत प्रयास करके बड़े बड़े यंत्र बनाकर वो लोग दूसरे लोगों के और जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये पहला चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि पहली बार लोग और दूसरे लोग नहीं जा रहे। हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। पहला चीज है कि प्रभुपाद जी वो भूमिका में बोलते हैं, आधुनिक मानव बहुत प्रयास करके अन्य लोगों को जाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहा है, तो इसके लेकिन वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तो ये पहला चीज है इसमें। और दूसरी बात है, ये नया चीज नहीं है अन्य लोगों में जाना, ये पहले जमाने में भी करते थे। वास्तव में तो जीव हमेशा भ्रमण कर रहे, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान, पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, हबू डबू बाय, कभी ऊपर उठते हैं कभी नीचे गिर जाते हैं। तस्य हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम उपर्यत, भ्रमताम उपर्यत। मनुष्य जीवन में उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो हम लोग ऊपर नीचे भ्रमण करने के बाद भी प्राप्त नहीं किए, तो ऐसे ऊपर नीचे हम लोग जाते ही रहे हैं, तो ये विशेष चीज नहीं मनुष्य जीवन का। अभी कोई बोल सकता है हमारा देश यशस्वी है क्योंकि हम चंद्रमा के ऊपर एक यंत्र भेज दिया, या मंगल ग्रह के ऊपर हम लोग एक बंदर भेज दिए, तो इसलिए हमारा देश यशस्वी है, या हमारा जीवन मनुष्य जीवन यशस्वी हो गया। वो यशस्वी नहीं है, वो तो कर रहे हो करोड़ों सालों से कर रहे हो, ये नया चीज नहीं है। सो वो सब गीतों में भक्तिविनोद ठाकुर तो वो क्या है, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, वो सब वर्णन करते हैं, तो ये सब नया चीज नहीं है। और जो तरीका उन्होंने उसको अपनाया वो भी क्या है, गलत है, जो यांत्रिक तरीके से। इसको हिरण्यकश्यपु या रावण मेंटालिटी कहते हैं, रावण का असुरी प्रवृत्ति। क्यों, रावण भी क्या कर रहा था, वो कोई प्रभुपाद जी उसको प्रथम स्कंद में बोलते हैं, ही चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम गॉड्स। जो भगवान ने नियम बनाया है उसको उन्होंने चुनौती दिया, तो क्या है वो, ऊंचे लोग जाने के लिए हमें कुछ पुण्य करना पड़ेगा। तो रावण ने क्या बताया, कोई पुण्य करने का जरूरत नहीं है, हम आप ऐसे ही आपको भेज देंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे सीढ़ी बनाने के लिए कोशिश किया उसने, तो वो लोग सब चलता नहीं। कौन सा है वो भी स्टोरी है ना, कुछ त्रिशंकु क्या है, व्हाट इज दैट, ही मस्ट नो त्रिशंकु, व्हाट इज द स्टोरी, समबडी वांटेड टू सेंड नो विश्वामित्र आर ओवर, विश्वामित्र वांटेड टू सेंड वन फेलो टू स्वर्गलोक, ऑल्दो ही वाज नॉट क्वालिफाइड। विश्वामित्र क्या है, वो एक व्यक्ति को स्वर्ग भेजना चाहता था जो अयोग्य था, तो इंद्र ने क्या कर दिया, उनको अपने वज्र से क्या कर दिया, उनको मार दिया और बीच में ही अटक गया, वो त्रिशंकु बन गया, एक अलग उसका क्या है ग्रह कुछ हो गया, जगह हो गया। तो ऐसे कुछ योग्यता का पालन करना पड़ता है, कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, जो भगवान के नियम को चुनौती देते हैं उनको क्या हो जाता है, तो बहुत सारा दंड मिल जाता है। ये लोग मूर्ख लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं ऊंचे लोगों में जाने के लिए, ये यांत्रिक दृष्टिकोण से कितने सारे दुर्घटनाएं हुई है इसके कारण, कितने सारे लोग मर गए। तो एक बंदर ही थी ना, वो भी जाने के लिए गई और मर गए। तो ऐसे कितने सारे लोग वहाँ मर गए, और ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब अंतरिक्ष यान का पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। तो आरंभ से जब दूसरा युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया, तो अमेरिका और जो रूस है बहुत शक्तिशाली बन गए आर्थिक दृष्टिकोण से और तकनीकी के दृष्टिकोण से। तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा शीतल युद्ध कहते हैं उसको, ऐसा हो रहा था। और आरंभ से ये रूस लोग क्या करने लगे, अंतरिक्ष यान में वो ये सभी यंत्रों को भेजना शुरू कर दिया। तो अमेरिका ने सोचा कि हम क्यों पीछे पड़ना चाहिए इनके पीछे करके, वो लोग भी भेजने के लिए कोशिश किए। तो ऐसे वो लोग कहते हैं कि हम लोग चंद्रमा के ऊपर पहला कदम रखे, ये अमेरिका का बहुत ही यशस्वी चीज़ है। तो कोई तो साधारण व्यक्ति तो इसको इसको क्या है सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जो वो लोग कहते हैं हमें उसको मानना चाहिए, बस यही उसका प्रमाण है और कुछ नहीं। या ऐसे वो लोगों ने कुछ पत्थर लेकर आया है या कुछ ऐसे चित्र बनाया है तो उसको हमें स्वीकार करना है, तो यही उसके लिए प्रमाण है। वो गए या नहीं गए कौन पता नहीं, इसको पता नहीं, तो हमें इसको माना, लेकिन शास्त्र के अनुसार तो वो नहीं जा सकते, तो हम लोग तो शास्त्रों को स्वीकार करते। तो ऐसे यहाँ पर आप जाना भी चाहते हो ठीक है, तो जाने का क्या है, वो नया चीज़ नहीं है, तो अच्छी तरह से जाओ, सुगम यात्रा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ज्ञानति देव व्रता देव, जैसे अलग अलग देशों में जाने के लिए हमें कुछ तैयारी करना पड़ता है, हमें पासपोर्ट चाहिए, वो चाहिए, परमिशन चाहिए, वो सब कुछ चाहिए, वैसे ही अन्य लोगों को जाने के लिए भी ऐसे ही होता है ना, तो यही नियम है बस। तो जब तक, और दूसरा चीज, हम लोग अन्य लोगों में जो जीव के अस्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर क्या चाहिए, उस वातावरण को अनुकूल शरीर का जरूरत होता है ना। इस जगत में भी हम लोग देते हैं, इस पृथ्वी पर भी हम लोग देते हैं, हम लोग जाके पानी में नहीं रह सकते, एक दो घंटा आप पानी में रहिए क्या हो जाएगा, आपका शरीर क्या होता जाएगा, वो डिके स्टार्ट डिके क्षय होता जाएगा, होता है ना। आप पानी हाथ भी पानी में रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो त्वचा कैसे होता जाएगा, है ना, तो ऐसे क्षय होता जाएगा, क्योंकि अलग अलग वातावरण के लिए उसको जो सूटेबल मतलब जो अनुकूल जो शरीर है वो चाहिए, वैसे ही अन्य लोगों में जाने के लिए उसका अनुकूल शरीर चाहिए, नहीं तो वहाँ पर नहीं जा सकते या वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ पर रह भी नहीं सकते। तो ये सब चीज़ की जरूरत होता है, इसलिए उसके लिए जो विधि है वही बताओ, यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं, आप देवताओं के पास जाना चाहते हैं तो उन देवताओं को पूजा करना चाहिए, तभी उनके पास जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान पहले भी पिछले अध्याय में उन्होंने बताया, आ ब्रह्म भुवन आलोक पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म। बहुत ही सुगम यात्रा कर सकते हैं अन्य लोगों के लिए, लेकिन फिर भी भगवद्गीता आपको ये इट डजंट रेकमेंड, अनुमोदित नहीं करता है, क्योंकि ऊंचे लोक में जाने के बाद भी कुछ अच्छे कुछ विशेष चीज प्राप्त नहीं होने वाला है, यही भौतिक जगत के ही भोग में लिप्त हो जाएंगे और कुछ नहीं है। तो हमें क्या जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? हमें भगवान के पास जाना चाहिए। जब भगवान के पास जाते हैं तो फिर से इस भौतिक जगत में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब हमें समझना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में फिर से ये लोग क्या क्या विधि बताया गया है उसको वर्णन कर रहे हैं कि वेदों में ऐसे बताया गया दर्श पूर्णमासी करके, जो जिनको करने से क्या हो जाता है, तो अलग अलग देवी देवताओं के पास हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे पिशाचों का, यक्ष राक्षसों का भी पूजा करने से बहुत सारे ऐसे ब्लैक मैजिक को लोगों को प्राप्त होता है। ये कुछ आध्यात्मिक नहीं है। और जो भक्त लोग जब भगवान को पूजा करते हैं तो वो वैकुंठ में चले जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण बाणामृत का आंदोलन क्या कर रहा है। कृष्ण बाणामृत आंदोलन क्या कर रहा है, ये हमें समाचार सबको प्रचार कर रहा है कि कैसे ये सभी मानव समाज ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है उसको स्वीकार करने से हम लोग हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा और भगवान के धाम वापस चले जाएगा। ये कृष्ण बाणामृत का प्रचार कार्य है। कृष्ण बाणामृत का प्रचार कार्य ये नहीं है कि आप यही भौतिक जगत में करियर बनाओ, यहीं पर बड़ा अफसर बनो, आईएएस अफसर बनो और यही भौतिक जगत में बार बार जन्म लेते कुत्ते बिल्ली बनते रहो, है ना। बड़ा अफसर मतलब बड़ा कुत्ता बन जाएगा, बड़े परिवार में कुत्ता बन जाएगा, वही है बस, है ना। प्रभुपाद जी बोले पहला प्राइम मिनिस्टर जर्मनी में, प्रभुपाद जी नहीं बोले, एक वही एक भविष्य था ज्योतिष ने बोला, जर्मनी में एक जर्मन शपड़ बन गया वो। तो भौतिक जगत में बड़ा अफसर मतलब बाद में जाके एक बड़ा कुत्ता बना बस। इससे अच्छा है भगवान के पास जाना चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, तो ये मिशन स्टेटमेंट है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का। क्या कार्य होना चाहिए, क्या कार्य है, क्या प्रचार कार्य है। सो श्लोक क्रमांक 26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, ऐसे कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर रहे हैं कि कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये नहीं कर, ये कृष्ण बाणामृत को स्वीकार नहीं करता है या नहीं करना चाहता है, क्योंकि इतना आसानी से इतने बड़े क्या है फल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन इसको स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे कहते हैं। मार्वलस रिजल्ट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग सच अ मार्वलस रिजल्ट। तो क्या है वो ऐसा आश्चर्य, मैं फल प्राप्त करने की विधि इतना सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति कर सकता है, फल फूल जल ये पुष्प वगैरह कहीं भी उपलब्ध है, है ना। पहले जमाने में ऐसे होता था, आजकल उपलब्ध नहीं है, वो भी उसको भी खरीदना पड़ता है ना? ये आधुनिक समाज का प्रगति है ना? फल फूल तो इसको क्यों, और जल को क्यों खरीदना चाहिए, जल को खरीद रहे हैं आजकल, है ना। जल अर्पण करने के लिए भी आपके पास जल नहीं है, इतना प्रगति कर दिया आप। तो पहले जमाने में ऐसे होता था, लोग फल फूल उगाते थे, कोई भी जाके उसको लेके भगवान को अर्पण कर सकते थे, कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी इतना प्रगति कर दिया ये लोग उनको ऐसे थोड़े फल फूल को अर्पण करने के लिए भी नहीं है, है ना? ऐसे कुछ गार्लैंड बना के लेता है लोग उसके लिए कितना सारा पैसा जाता है ना? तो ये आधुनिक जमाने का प्रगति है। तो जितना हम लोग ये तथाकथित प्रगति करेंगे उतना हम लोग भगवान से दूर चले जाएंगे, भगवान को सेवा अच्छी तरह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या है। ये ऐसे सिटी जो ऐसे अर्बनाइजेशन, अर्बन सेटिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके कारण क्या हो जाता है, जो भक्ति संबंध चीज है उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। तो कितने आसान है ये भक्ति करना, सुसुकुम कर्तुम अयम या पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो आसान चीज भी कठिन हो जाए। तो ये समस्या है शहरों में रह के भक्ति करने का समस्या है। आप इतना एक फूल को अर्पण नहीं कर पाते हैं तो कितना भक्ति है आपका, है ना? भगवान को कितना आपका भक्ति है, कितना प्रगति होगा आपका भक्ति भावना में। थोड़ा जल को आप अच्छा जल को अर्पण नहीं कर पाएंगे तो कितना प्रगति करेंगे आप, है ना? तो ये सब चीज, ऐसा समाज है वो भक्ति के लिए अनुकूल कारक समाज नहीं है। तो इसलिए भक्ति मतलब क्या है, या भगवान शरणागति कहते हैं, भगवान के शरण में जाना, इसका अर्थ क्या है, जो भक्ति के लिए अनुकूल स्थिति है उसको स्वीकार करना और प्रतिकूल स्थिति है उसको त्याग देना। तो ये भक्ति के शरणागति क्या है, आरंभिक लक्षण है। तो हम लोग इसलिए एक भक्ति के लिए अनुकूल कारक वातावरण बनाना चाहिए ताकि आसानी से हम लोग भक्ति कर सकें। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यह सब फार्म कम्युनिटी वगैरह बनाया। तो क्या मुश्किल है, क्या तकलीफ है, इतने गधे जैसे काम करके शहर में आप एक फूल फल जल को भी भगवान को अर्पण नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा उसको उगाने में क्या तकलीफ है, कितना क्यों कष्ट होता है, है ना? कोई भी कर सकते हैं ना, उसको फल का एक पेड़ लगा दिया, फूल का एक पेड़ लगा दिया, उसको थोड़ा जल अर्पण करना हर रोज, क्या समस्या है उसको? तो आधुनिक सभ्यता क्योंकि असुरी सभ्यता है वो भक्ति के लिए अनुकूल कारक नहीं है। तो पहला चीज इसमें क्या हम लोग समझते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े बड़े चीजों की जरूरत भी नहीं है। हम लोग वो श्लोक भी उल्लेख कर रहे थे ना पहले, गौतमीय तंत्र में और अन्य जगह भी विष्णु स्मृति में आता है शायद, तो कि भगवान कृष्ण वो इतना भक्तों के प्रति इतना भक्त वत्सलता है उनका कि थोड़ा भी जल और पत्ता भी अर्पण करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं वो उस भक्त को। तो क्या है वो, जलस्य चुलकेन वा श्लोक है ना, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलकेन वा। सो तुलसी दल, सिर्फ तुलसी दल और थोड़ा गंगा जल अर्पण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बहुत ही गरीब सा गरीब व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी तो ऐसे वर्णन करते हैं, भक्ति तो इतना आसान है कि क्या कर सकते हैं, ये भी नहीं है तो सिर्फ बैठ के ऐसे इनको अर्पण करने का ध्यान कर सकते हैं हम लोग, ऐसे इतना आसान है। आप बैठ के क्या करना चाहिए इसके ऊपर, मैं अभी भगवान को फूल लेकर आ रहा हूँ, जल लेकर आ रहा हूँ, भगवान को नहला रहा हूँ, तो ऐसे करने से भी वही फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ध्यान उतना नहीं है कि ऐसे बैठ के हम कुछ और सोचना शुरू कर देंगे, है ना। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ध्यान करने के लिए बताया गया है। तो ये सब चीज बहुत ही आसान करने के लिए, और लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि गरीब से गरीब, मतलब वो पत्रम पुष्प, भगवान यहाँ पर पत्रम पुष्पम फलम तोयम बताया है, इसलिए ऐसे अमीर अमीर व्यक्ति भी सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम को अर्पण करेगा, ऐसा नहीं। तो जिसके पास ज़्यादा है उसको भगवान को देना चाहिए। तो और ऐसा नहीं कि भगवान भूखे है, भगवान भूखे नहीं है, भगवान बहुत अमीर है, और भगवान हमारे सेवा हमको जरूरत नहीं है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो हजारों हजारों संख्या में लक्ष्मियाँ उनका सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी मतलब वो सौभाग्य के देवता है, देवी है, तो सभी सौभाग्य उनके पास रहता है। तो इसलिए भगवान को जरूरत नहीं है, फिर भी जब हम लोग अर्पण करते हैं तो हमें उसका फायदा होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अश्नामी शब्द आता है ना, अश्नामी प्रेतात्मना का। एक दृष्टिकोण से अश्नामी क्या होता है, वो खाता हूँ बोलते हैं, भगवान खाते हैं। लेकिन यहाँ पर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अलग अलग वस्तुओं के बारे में भगवान बोल रहे हैं। जिनको पुष्प को तो खाते नहीं, उसको सूंघा जाता है ना, तो इसलिए एक्सेप्टेड, इसको स्वीकार करता हूँ, ऐसे उसका अर्थ होता है अश्नामी का। तो ऐसे हो यहाँ पर कह रहे हैं, तो भगवान स्वीकार करते हैं या वो खाते हैं, वो जो भी अर्पण किया जाता है उसको खाते हैं वो। लोग सोचते हैं ये पत्थर कैसे खाता है, पर आप लोग पत्थर को अर्पण कर रहे हैं, मूर्ख लोग, असुर लोग या नास्तिक लोग, पत्थर कैसे खाता है ऐसे बोलते हैं। तो वो लोगों को पता नहीं है कि भगवान अचिंत्य शक्ति के द्वारा वो सब जगह उपस्थित हो सकते हैं, पत्थर में भी वो प्रकट हो सकते हैं। और कभी कभी लोग ऐसे भी कहते हैं कि आपने जो अर्पण किया वही तो वैसे यथा स्थिति में है ना। तो क्या बोलेंगे उसके लिए, हाँ वो भगवान के इंद्रियां परिपूर्ण है। हम लोग हर रोज सुबह गाते हैं ना, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। उनके सभी इंद्रियां परिपूर्ण है, वो ये हर एक इंद्रिया अन्य इंद्रियों का भी कार्य कर सकता है, वो नेत्रों से भी खा सकते हैं, है ना। सो वो दृष्टिपात करके भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनको ऐसे जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही खाना चाहिए। तो ये भी ऐसे धारणा, गलत धारणा है कि सब भगवान हमारे जैसे होना चाहिए, हमारे में से एक है भगवान, है ना। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, इस अध्याय के आरंभ में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उनके अचिंत्य शक्तियों को जानकारी न होने के कारण लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे में से एक है, तो क्यों हमारे जैसे ही खाना चाहिए। वो खाते भी है और वापिस वैसे भी रख सकते हैं, और वो सब कुछ खाते हैं तो भक्त लोग क्या खाएंगे। भक्त को उन लोगों के लिए भी थोड़ा रखना पड़ेगा, इसलिए वो रखते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसलिए तात्पर्य में अंतर बोलते हैं कि जो निराकारवादी लोग हैं वो लोग इस श्लोक को समझ नहीं पाएंगे। वे मायावादी चिंतक भगवद्गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवद्गीता का उद्घोष कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है और यहाँ कहा गया है कि उनकी इंद्रिया परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिया दूसरी इंद्रिया का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का अवश्य यही है, आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता है। सातवें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं, इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को पूर्ण प्रेम पूर्ण शब्द सूचना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के समरूप है। प्रेम पूर्ण यहाँ पर भक्ति शब्द बार बार आता है ना। सो इसलिए भक्ति महत्वपूर्ण है। ये सब चीज क्या जिनको हम लोग अर्पण कर रहे हैं वो हमारे भक्ति को प्रस्तुत करते हैं। दे आर मीन्स टू एक्सप्रेस अवर डिवोशन। तो भक्ति महत्वपूर्ण है, और भक्ति है तो तुरंत ही हम लोग भगवान को अच्छे से अच्छी तरीके से हम लोग उनको सेवा करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे। तो और ऐसे बोल रहे यहाँ, अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों की प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। प्रभुपाद बोलते हैं इस बात पर हमें बल देना चाहिए कि कैसे भगवान के सभी कार्य क्या है, एक ही समान है। आप प्रेम से भगवान को ऐसे बोल दिया, भगवान मुझे ये स्वीकार कर दिया, वो सुन लिया तो वो उसको स्वीकार करने के समान है। तो ऐसे भी होता है ना, ऐसे हमने सुना था, पता नहीं कितना वो ये है, जगन्नाथपुरी में वो सिर्फ उसको पकाने से ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसको, वो है ना वो काजा है ना। सो ऐसे सुना था मैंने। तो एनीवे, तो कहने का क्या चीज़ है, हम पकाते पकाते हम लोग ऐसे भावना है कि भगवान को हम लोग बना रहे हैं, और बाद में कह देते हैं कि भगवान मुझे ये स्वीकार कर लीजिए, तो तुरंत ही भगवान उसको स्वीकार कर देते हैं। तो ये बल हमें देना चाहिए इस बात पर। केवल भक्त ही बिना थक के यह समझ सकता है कि परम ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। तुम भोजन कर रहे हो लेकिन परम ब्रह्म भोजन नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारा खाओगे, मायावादी लोग खाते हैं, बहुत हट्टा कट्टा होते हैं ना सब लोग, मायावादी लोग है ना, तो वो लोग खाते हैं लेकिन भगवान को भूखे रखना चाहते हो। ऐसे भगवान भूखे नहीं रहते हैं, लेकिन ये है उदाहरण। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए, हम लोग देवी देवताओं के लिए नहीं करना चाहिए, वो अविधि पूर्वक है। तो इसको प्रॉपर यहाँ पर हरे के लिए बता रहे। तो यत् करोषि, जो कुछ भी हम लोग कार्य करते कर्म करते हैं उसको भगवान को करना चाहिए। हमारे जो भी नियत कर्म है उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन किस लिए करना चाहिए? माता जी को आकर्षित करने के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता है ना। यत् करोषि यद् अश्नासि, जो भी खाते हैं उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। यज्जुहोषि,
जो भी अर्पित करते हैं उसको भी भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। सो बहुत सारे अर्पण करते हैं चीज़ों को हम लोग, ददासी, जो भी दान देते हैं वो भगवान को ही दान देना चाहिए। ये सब श्लोक अच्छा है ना, हम लोगों को बोल सकते हैं हमें ही दान दीजिए ऐसे। लेकिन हम लोग उसको, इसके पहले क्या बताया भगवान ने, जो भी अर्पित करते हो उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। वो दान क्या है, भगवान को अर्पण होना चाहिए, है ना। भगवान ने बोल दिया जो भी दान देते हो मुझे ही दान दे दो, हम उसको उल्लेख करके बोल देंगे अब जो भी देना चाहते हैं वो भगवान को ही देना चाहिए। जब वो हमारे थ्रू जाता है तो वो भगवान को समर्पित होना चाहिए, है ना, बीच में रुक नहीं जाना चाहिए। इसलिए पहले उन्होंने अर्पित किया, करते हो उसको मुझे ही अर्पित करो ऐसे। तो ददासी तत्तपस्य सिकौंतेय तत्पुरुषव मदर्पणम, जो भी तपस्या करते हैं मुझे ही अर्पित करो ऐसे बोलते हैं। सो हम लोग प्रवचन देते हैं तो भगवान को ही, भगवान से प्रवचन के आरंभ में प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ मुझे कुछ बोलने के लिए शक्ति दीजिए। अंत में क्या, जो भी हमें राय श्रेय मिलता है वो हम लोग ले लेते हैं, उसको भी क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार या प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी अवस्था, किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। वी शुड मोल्ड अवर लाइफ इन सच अ वे दैट वी डोंट फॉरगेट कृष्ण, वी रिमेंबर कृष्ण 24 आवर्स। ऐसे सब कुछ ऐसे हमारा व्यवस्था होना चाहिए, सुबह से उठते समय से रात को सोते समय हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग भक्ति में चीज दिए गए हैं कैसे भगवान का स्मरण किया जाता है, हमारे भक्ति जीवन को ही ऐसे ही व्यवस्था की गया। सुबह उठते ही हम लोग गुरु और कृष्ण को स्मरण करते हैं और स्नान करते हैं भगवान को कृष्ण का, और तिलक लगाते हैं भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, प्रसाद लेते हैं तो भगवान कृष्ण का। तो ऐसे सब कुछ हमें तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे हमारा 2400 घंटा चलना चाहिए। चीज है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति के को जीवन जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं या मुझे दे दो, गिव इट टू मी, मुझे दे दो। तो गुरु भी क्या करते हैं, सब कुछ ले लेते हैं और भगवान को अर्पण कर देते हैं। एक ऐसा साधु था, उसको कोई ऐसे कुछ सिक्का दिया तो वो नहीं छुआ उसको, नहीं ये माया है ऐसे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी दे दो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद और क्या करते थे, दे दो, वो भगवान को अर्पण करते थे सब कुछ। ये युक्त तो वैराग्य है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ मुझे दे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। एक और कृष्ण भावनामृत आंदोलन, यहाँ पर शब्द आता है ना, अधिक जो भी धन है वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जाना चाहिए। लोग क्या है, कम से कम जितना जरूरत है उतना रखना चाहिए, सब कुछ क्या है भगवान कृष्ण को देना चाहिए, आंदोलन को बढ़ाना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को देना चाहिए। और धन भी बहुत सही तरीके से हमको उपयोग करना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना श्रील प्रभुपाद जी के, आजकल लोगों के पास बहुत धन है और इस्कॉन में भी बहुत सारा धन आता है तो लेकिन श्रील प्रभुपाद उसको बहुत ही जागरूकता से उन्होंने उपयोग किया ना।
हर एक पैसा पैसा का भी वो क्या लिखते थे, वो अकाउंट रखते थे वो, और हमेशा सोचते थे कैसे उसको सस्ते से सस्ते किया जाए। ऐसे धन भी भगवान की शक्ति है, भगवान का ही उपयोग करना चाहिए, सब कुछ भगवान का शक्ति है। तो हमारे सेवा में जितना कम है उतना कम उसको उपयोग करना चाहिए, जो भी हमारे जीवन निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना ही उसको स्वीकार करना चाहिए, सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 2400 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यान की ध्यान ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता के 6 अध्याय में की गई है। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नंतरात्मना शतावान भजते यो माम समय। ठीक है, ध्यान करना चाहते हैं तो करो, कुछ गलती नहीं है, तो भगवान के संबंध में करो, कृष्ण के कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। सो श्लोक क्रमांक 28। शुभाशुभ फलय रे बम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्ता विमुक्तो माम उपैष्यसि। तो इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकेगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करते तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। यहाँ पर भगवान संन्यास योग का वर्णन कर रहे। क्या होता है वो संन्यास योग? प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं ना, जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होता वही वास्तविक संन्यासी है। तो संन्यासी कौन संन्यासी है? भगवान को छोड़कर अन्य कोई क्या है उनको इच्छा नहीं रहता, उसको संन्यासी कहते हैं। तो बाहरी तौर से दंड और ऐसे वस्त्र पहन लिया, हम लोग संन्यास स्वीकार कर लिया, वो ठीक है, लेकिन वास्तविक जो वस्तु क्या है संन्यास आश्रम का, मन शरीर और वाणी भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा देना चाहिए, वो संन्यास आश्रम। मन शरीर और वाणी को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक जगह पर, वन हु डज नॉट रिग्रेट इज अ सन्यासी। ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिग्रेट मीन्स ऐसे शोक नहीं करता है, ऐसे शोक नहीं करता है वो सन्यासी। इसका अर्थ क्या होता है? ओ मैं भी ये सुंदर स्त्री का साथ आनंद ले सकता था, मैं भी ये बड़े ऐश्वर्यशाली जीवन बिता सकता था, ऐसे जो सोचता है वो तुरंत ही वो सन्यास से उसका पतन हो गया, वो सन्यासी नहीं है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, वो सन्यास है। इसका अर्थ है दूसरे शब्दों में कि सिर्फ उसको भक्ति भगवान को भक्ति करना छोड़कर अन्य कोई इच्छा नहीं होना चाहिए भगवान की सेवा। ठीक है, संन्यास आश्रम में भी कभी कभी इच्छा आ सकता है, लेकिन उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको अन्न नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक वक्त उनको, मुझे बहुत सारे वासनाएं क्या कर रहे, तकलीफ दे रहे, वासनाएं तकलीफ दे रहे, इसका अर्थ है कि क्या उनको हमें पूरा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मैं अपने मन को भगवान के ओर लगा देना चाहिए। फिर प्रभुपाद अपना ही उदाहरण है, मैं सन्यासी हूँ, मुझे भी मेरे पत्नी का याद आ जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे पत्नी के पास वापस चले जाऊँ। इसलिए सन्यासी को नियम है, फिर से पत्नी को, अपने पत्नी को उनके पूर्व आश्रम में जो पत्नी थी गृहस्थ आश्रम में, उनको मिलना मना है, वो कभी मिल नहीं सकते। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य एक जगह पर गए, उनको पता चल गया कि उनके पूर्व पति, उन्होंने संन्यास लिया था, उनके पूर्व पति वही मंदिर में है करके, तुरंत ही वो एयरपोर्ट से वहाँ से निकल गया ऐसे तो ये तो संन्यास योग मतलब सब कुछ जैसे पिछले श्लोक में वर्णन करते सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। अनासक्तस्य विषयान यथारम्भ उपयोग्यता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। इसको भी चर्चा कर चुके हैं पहले। अनासक्ति की भावना होना चाहिए। संन्यास मतलब यहाँ पर है ना, तो कौन युक्त वैराग्य को असली में पालन कर सकते हैं, जिसके ऐसा भावना है भगवान को प्रसन्न करने को छोड़कर अन्य कोई इच्छा नहीं है, भगवान को भक्ति करने का कोई इच्छा नहीं है, वो युक्त वैरागी है। इसलिए पहले अनासक्तस्य विषयान, उनको कोई आसक्ति नहीं है विषयों के प्रति। तो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, तो ये वैराग्य जो है क्या संबंध है भक्ति के साथ, तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रदान यहाँ गौर भगवान यह प्रीति है ना गौर भगवान, इसको देखकर गौर भगवान क्या हो जाते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये वैराग्य प्रमुख चीज है महाप्रभु के भक्तों का, ये जो गुण है वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा, वैराग्य विद्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र की तरह अंतिम जीवन अंतिम समय तक घर में ही रहे या ऐसे ही कुछ पद को पकड़ के रहे अंतिम जीवन तक, तो वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य और विद्या का अनुशीलन करना चाहिए, ये प्रमुख चीज है। गौर भगवान उनका यही मिशन है वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष। तो ये महत्वपूर्ण, लेकिन वो कैसे किया जाता है, लेकिन वो फल्गु वैराग्य नहीं, जो भगवान के संबंधित वस्तुओं को क्या है भगवान को अर्पण नहीं करना, वो फल्गु वैराग्य। तो सभी वस्तुओं को अनासक्त भावना से, वो आसक्त नहीं होते, जैसे हम उदाहरण दे रहे थे ना, एक वक्त वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे क्योंकि उनको ये सेवा दिया गया था, वहाँ पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना चाहिए, ऐसे पढ़ते गए एक दिन न्यूज़पेपर नहीं आया, बहुत विचलित हो गए वो, तब उनको समझ में आ गया कि हम न्यूज़पेपर पढ़ने में आसक्त हो गए करके। तो ये आसक्ति नहीं होना चाहिए, अनासक्तस्य विषय। तो विषयों के प्रति अनासक्ति भावना से यथारम्भ उपयुञ्जता, जैसे जिस हद तक हमारे शक्ति है भक्ति शक्ति होनी चाहिए, भक्ति में शक्ति होना चाहिए, उसके अनुसार हमें उसको उपयोग कर सकते हैं, है ना, नहीं तो इसके हम लोग सेवक बन जाएंगे, इन चीज़ों के हम लोग सेवक बन जाएंगे भगवान की सेवा को छोड़कर, उसको यथारम्भ कहते हैं। इसका अर्थ ये भी होता है कि जिस हद तक हमें भक्ति करने के लिए अनुकूल कारक है उसी हद तक, तो निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य, वास्तव में कोई बंधन नहीं है कि क्या चीज हम लोग भगवान को सेवा अर्पण कर सकते हैं। वैसे वो भी है कि भगवान सिर्फ जो सतोगुण में है उसको स्वीकार करते हैं, सतोगुण के चीजों को शुद्ध चीजों को वो स्वीकार, भौतिक जगत में शुद्ध चीज मतलब सतोगुण के जो चीज है, ऐसे रजत तमोगुण का चीज वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो कोई बंधन नहीं है, निर्बंध है कृष्ण समंत में सब कुछ भगवान की शक्ति से ही, भूमि रखो जल वायु अग्नि से ही बना है, सो कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पहले ही क्वालिफाई किया गया, पहले उसको बंधन कितना अनासक्ति भावना से और कितना जरूरत है, तो उसको हमें भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो संन्यास ग्रहण करने से वो क्या किया, उन्होंने 9 से 10 साल तक वो क्या किया, हर रोज 192 माला जप किया, सिर्फ एक बार अपने हाथों से ही बना हुआ थोड़ा चावल क्या करते थे वो लोग, वो थोड़ा नमक और घी के साथ वो भी कैसे खाते थे, गो ग्रास उसका पद्धति, वो उस पद्धति से वो खाते थे। गो ग्रास मतलब हाथ से भी नहीं खाते थे, उसको जमीन पर डाल देना और ऐसे मुंह से खा, तो ऐसे वैराग्य, ऐसे अनासक्ति। तो पहले उन्होंने क्या किया, अनासक्ति का जो सिद्धांत को प्रस्तुत किया, फिर युक्त वैराग्य का सिद्धांत को, कैसे उसको सब कुछ भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। वो बहुत सारा नियम बताते हैं, अपने सन्यासियों के लिए बहुत सारा एक लंबा लिस्ट दिया है क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना है तो चल के जाना चाहिए, प्रचार के लिए जाना है तो गाड़ी लेकर जा सकते हैं, ऐसे होता है। तो अपने लिए कुछ नहीं करना, शरीर के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है, शरीर भी भगवान की सेवा में लगा है, उसका भी ख्याल करना चाहिए कुछ रहता है, लेकिन वो कुछ वो मुश्किल हो जाता है, कितने कहाँ पर ये लाइन डाले ना, मुश्किल हो जाता है। तो दोनों में जब क्या हो जाता है, कुछ ऐसे तनाव आ गया दोनों के बीच में, ऊंचा हमें क्या है, सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए हमेशा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऊंचा सिद्धांत प्रचार के नाम पर कोई सीमा ही नहीं रहता है ना, इस तो सीमा ही होना चाहिए। तो ये सब के लिए क्या चाहिए, एक ऐसे बुद्धि, दार्शनिक बुद्धि कहते हैं उसको, ये सभी शास्त्रों के गुरु के उपदेशों को सुनकर जो बुद्धि होता है उसके आधार पर ये सब चीज हम लोग समझ सकते हैं क्या होना चाहिए, या गुरु के मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पर वो चीज वर्णन कर रहे थे, वहाँ पर श्री प्रभुपाद वो कहते हैं कि गुरु के मार्ग जो स्वीकार करना या जो नकारना है वो गुरु के आदेश के अनुसार या मार्गदर्शन के अनुसार होता है। और अंत में कहते हैं तो माम उपेश्यसी, ऐसे व्यक्ति क्या है भगवान के पास आते हैं। सो कभी कभी ऐसे लोग होता है कि भक्त क्या करते हैं, बाहरी तौर पर ऐसे लगता है कि वो एक भौतिकवादी के कार्य कर रहे हैं ऐसे लगता है, लेकिन भक्त का कार्य कोई भौतिक नहीं होते हैं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन में गए, वो लोगों ने कहा ये भक्त नहीं है ये ज्ञानी है करके, क्योंकि उन्होंने उपदेश उपनिषद के ऊपर प्रवचन दिया। वो गाड़ी में चलते थे, वो बड़े बड़े गाड़ी में, तो लोग उनको समझ नहीं थे। तो इसलिए थारा वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए चैतन्य चिंतामृत, भक्त के शब्द क्रिया और जो बर्ताव है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो ऐसे संन्यास योग में लगते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं, वो लोग क्या है, इस भौतिक जगत के शुभ और अशुभ कर्म के फल है उससे मुक्त हो जाते हैं। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। और क्योंकि संन्यास योग युक्तात्मा, युक्तात्मा शब्द आता है, इसलिए युक्त वैराग्य का भी यहाँ पर श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। सो श्लोक क्रमांक शायद हम बोलना चाहिए ना, प्रसाद लेने के लिए रुकना चाहिए ना, अभी इसके पहले प्रसाद लिए थे ना लोग, क्लास के पहले प्रसाद लिए ना सभी लोग, ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं, फिर वापस आएंगे 10:30 बजे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
हरे राम हरे राम।
कोई प्रश्न है क्या, 5 मिनट प्रश्न है। नहीं लेना चाहिए। ऐसे जो पैसा जो है वो है ना, वो शराब को बेच कर वो करते हैं, और क्या है ऐसे बहुत सारा चीज है, आजकल तो बहुत सारा चीज होता है, क्योंकि उसके साथ साथ जो कर्म है हमें स्वीकार करना पड़ता है, हमारा मन दूषित हो जाएगा, हमें भगवान का स्मरण करना नहीं होगा। इसलिए उनको प्रचार करना चाहिए कि ऐसा आप जो कर रहे हैं कार्य, आपका जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, ऐसे करके प्रचार करना चाहिए, प्रचार करके ही हमें स्वीकार करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे ही बोलते हैं, जितना जो सही कार्य है, जो सही व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी प्रचार करके ही उनका धन लेना चाहिए, ऐसे ही धन नहीं ले सकते। शोभा जी उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार उसको वापस भेज दिए, क्या आपने कृष्ण कथा कह के ये लेकर आए पैसे? एक बार उनके शिष्य एक लॉयर के पास गए और उनके पत्नी को द्वारा उनकी पति को बाध्य करके बहुत सारे चीजों को, सामग्री को इकट्ठा करके लेकर आए, दान में लेकर आए। पहले अपने उनके पत्नी के सामने उनके पति को गुणगान किया, ऐसे कुछ किया उन्होंने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापिस लेके जाके उनको ये दे दो और कृष्ण कथा करके वापिस लेकर आओ। कम से कम बाद में तो प्रचार करना चाहिए ना उनको, है ना? ठीक है, उनका जो अर्पण करते हैं तो, लेकिन जो जिनका व्यवसाय ठीक नहीं रहता, आधुनिक जमाने में क्या है व्यवसाय है सब, है ना? लेकिन ठीक है, उनको कभी ना ऐसे ही वो लोग भी तंग आ जाएंगे ना, है कि ना? सिर्फ आप पैसे के लिए जाएंगे, उनके धन के लिए भगवान का नाम बोलेंगे, लेकिन वो बाद में भगवान का निंदा करने ही ना करेंगे, उनको बोझा बन जाएगा, है ना? उनको प्रचार करेंगे तो उनका भावना भी अच्छा रहता है भगवान को देने का, है ना? हाँ, क्या प्रभुपाद जी ने भी वो लाइव मेंबरशिप में ऐसा ही बनाया प्रोग्राम, 50% वो लाइव मेंबरशिप का जो 50% जो धन होता है वो बुक्स में जाना चाहिए, मतलब उनको उतना बुक्स देना चाहिए, आजीवन बैक टू गॉड एंड मैगजीन देना चाहिए, जो भी हमारे छपे हुए बुक है वो देना चाहिए प्रभुपाद जी के बुक्स कम से कम। तो ऐसे 50% जो धन है वो पैसे बुक्स में भेजना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने क्यों बताया किया, वो बैलेंस किया होगा, नहीं तो कितने सारे कर्म हमारा मन दूषित हो जाएगा उसके कारण, ये सब नियम है। जोर से जोर से वो नहीं करना चाहिए, प्रचार करना
चाहिए,
या प्रसाद भेजिए और प्रचार कीजिए जाके उनको, है ना? उनके लिए कार्यक्रम, उनको भी इकट्ठा करके उनको कार्यक्रम कुछ प्रचार कीजिए उनको, नहीं तो वो लोग भी तंग आ जाएंगे ना, है कि नहीं? बात कितना देंगे वो लोग, ये लोग क्या है तंग करता है ऐसे बोलते हैं, है ना? आप प्रचार करेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है, ये लोग हमारे लिए कुछ कर रहे थे, हमारे प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ कर रहे थे, और हमारा मन भी ऐसे दूषित होता है ना, है कि नहीं? उनके पास जब जाते हैं
तो
अवैध रूप से मतलब क्या है? आप वो ठीक है उसकी ओर से वो करता जाएगा ऐसे ही अवैध रूप से वो क्या करेगा, धन इकट्ठा करते जाएगा और भगवान को थोड़ा देगा उसमें से, वो भी ऐसे कुछ भगवान के साथ बिजनेस, जैसे ईसाई लोगों को भगवान प्रभुपाद जी कहते थे ना, तो आप करेंगे जाके हम लोग क्या करेंगे, कन्फेस करेंगे, ऐसा हो गया, प्रायश्चित करेंगे, पाप करेंगे और प्रायश्चित करेंगे, पाप करेंगे प्रायश्चित करेंगे, ऐसा हो गया ना, वो प्रभुपाद जी को अनुमति नहीं था, अनुमति नहीं दिया। सो इसलिए उनको बदलना चाहिए, उनको वो बोलना चाहिए आप कुछ और कीजिए, ऐसे मत कीजिए। और वो चीज़ है, और दूसरा चीज़ है आपको जरूरी नहीं कि वो ठीक है। वो श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या है, विषयी अन्न खाइले मलिन हो मन, मलिन मन कृष्ण रसमरण। तो ऐसे वो कहते हैं उसमें अन्न मतलब धन भी बोलते हैं वहाँ पर, विशेष करके सन्यासी और गुरु को प्रभुपाद जी आदेश देते हैं, वो अपने शिष्यों से ही क्या लेना चाहिए, दान लेना चाहिए जिनको वो प्रचार करते हैं, ऐसे गुरु को कहते हैं, गुरु और सन्यासी उस तात्पर्य में खड़ी है, नहीं तो मन मलिन हो जाएगा, कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है डोनेशन लेते हैं, लेकिन ये कुछ तो हो, कुछ होना चाहिए, कुछ सीमा होना चाहिए। आजकल इस्कॉन में ये बहुत प्रचलित है, मंदिर क्या करता है, कुछ जगह लेके अपार्टमेंट मांगता है और वो भक्तों को सेल करते हैं, ऐसे चल रहा है, क्या कर सकते हैं, ऐसे चल रहा है आजकल। वो आइडियल नहीं है, योग्य तो नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे ये लोग अपार्टमेंट में रहते हैं मंदिर के साथ साथ में रहते हैं, ऐसे ये सब चल रहा है, क्या आइडियल नहीं है वो तो हम कह सकते हैं। मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वो पुस्तक वितरण में डालना चाहिए उसको, कुछ वक्त ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं मंदिर में डालना, वो वही वो ठीक नहीं हो सकता, मुझे याद नहीं है भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं। उस समय पर तो ज़्यादा इतना ये नहीं होता, क्योंकि जो ऑक्यूपेशन ऐसा नहीं थे उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती, बहुत ज़्यादा अग्रो वेश था, ज़्यादा ऐसे ही धान्य वगैरह धान्य लेकर आते थे। आजकल बहुत बिगड़ गया समाज, बहुत बिगड़ गया, या इसलिए हाँ आजकल ऐसे ही चल रहा है ना, अंधाधुंध मंदिर बांध रहे हम लोग, कैसे पैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ नियम नहीं है कुछ तो हम शुद्ध समाज को शुद्ध करने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना, लेकिन ऐसे वैसे अल्टीमेटली देखेंगे तो ये जो पैसा जो है पेपर मनी इट्सेल्फ इज अ बिग गैम्बलिंग है। तो इसलिए चेतना नीचे चला जाता है, चेतना ऊपर उठ नहीं रहा है, हम लोग बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत हम विस्तार कर रहे हैं,
लेकिन चेतना के अनुसार हम लोग उसको मापेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे जा रहा है, नीचे नीचे की तरफ। लेकिन अंत में कृष्ण भावनामृत चेतना का बात है ना, लेकिन चेतना हमारा चेतना ऊपर उठाना है और दूसरों का भी चेतना हमें ऊपर उठाना है। शहर में क्या कर सकते हैं, ये सब चीज चलते हैं। तो महाराज ने एक बात प्रवचन दिया ना, और कुछ ठीक है। हरे कृष्ण।